ये आकाशवाणी है, अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण और ग्रामीण समुदायों में नवाचार को बढ़ावा देना है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR के 40वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद, वैज्ञानिक और अनुसंधान विभाग के सचिव तथा वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक भी शामिल होंगे। समारोह के दौरान CSIR लघु उद्योग भारती के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समारोह का उद्देश्य उन्नत औद्योगिक अनुसंधान और नवाचार में DSIR की भूमिका को रेखांकित करना है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। गुजरात के सूरत में एक कार्यक्रम में श्री मांडविया ने देश को आगे ले जाने में युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनका मंत्रालय इस वर्ष गांवों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ मंत्रालय की कई योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने राष्ट्र निर्माण में गांवों की भूमिका का उल्लेख किया। श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं आम लोगों के लिए उम्मीदें दर्शाती हैं और ये उनके सपने पूरे करने के साधन हैं। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं केंद्र सरकार की गांवों के विकास करने की प्रतिबद्धता को भी उजागर करती हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल्ला खलील के बीच कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा मालदीव के साथ अपने संबंधों को विशेष महत्व देता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि भारत पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण के अंतर्गत मालदीव को सहयोग देना जारी रखेगा। दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मोइज़ू की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौते की प्रगति की समीक्षा की। डॉक्टर अब्दुल्ला ने भारत द्वारा मालदीव को समय पर दी गई आपातकालीन वित्तीय सहायता के लिए भी धन्यवाद दिया। दोनों देशों ने भारत की अनुदान सहायता से मालदीव में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के तीसरे चरण को लागू करने से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह, कृषि सहयोग, व्यापार और आर्थिक मुद्दों तथा सांस्कृतिक और जनसंपर्क सहित समूचे द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है। भारत ईरान विदेश कार्यालय की 19वीं सलाहकार बैठक कल नई दिल्ली में हुई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रेवांची ने बैठक की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बातचीत में अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया और दक्षिण कॉकस सहित सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई। विदेश सचिव ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास में सहयोग के लिए चाबहार बंदरगाह के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में शतरंज चैंपियन कोनेरू हम्पी और उनके परिवार से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने कोनेरू हम्पी को खेल आइकॉन और भावी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। श्री मोदी ने कहा कि हम्पी ने भारत का गौरव बढ़ाया है। हम्पी महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप की उप विजेता है। वे दो बार महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन भी रही है। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पांचवें तथा अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 57 रन बना लिए हैं। पहले दिन कल भारत की टीम अपनी पहली पारी में 185 रन पर सिमट गई थी। ऋषभ पंत ने सबसे अधिक 40 रन बनाए, जसप्रीत बुमराह ने 22 और रविन्द्र जडेजा ने 26 रन का योगदान दिया। बिहार में गुरु गोविंद सिंह की 358वीं जयंती पर 3 दिवसीय प्रकाश उत्सव आज से पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदर साहिब में आरंभ होगा। तख्त श्री हरमंदर साहिब खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थान है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की बिगड़ती स्थिति को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप 3 फिर से लागू कर दिया है। क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की स्थिति बहुत ही खराब श्रेणी में आने के बाद ये कदम उठाया गया है।